बाबा की साकार में पालना फिर से प्रारंभ हुई। कैसा लगा बाबा उस दिन आपको? माताओं को कैसा लगा? हैं? प्यारा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। भाइयों को कैसा लगा? हैं? बहुत अच्छा। बाबा थोड़ी देर आकर भी सबको फ्रेश कर देता है। चला तो गया था पर फ्रेश बहुत कर देता है। मुझे याद आ रही थी एक बात, क्योंकि बाबा के इस सीन को देखकर कईयों के मन में प्रश्न उठने लगे, कईयों को थोड़ा थोड़ा संशय भी उठने लगा, ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी होता नहीं था, गड़बड़ थी, क्या था। इसमें बाबा को बहुत गुह्यता से जानना आवश्यक है। इसमें जिस तन में वो प्रवेश करता है उसकी ब्रेन की हालत क्या है, उसमें भी कई चीजें निर्भर करती हैं। आप सबने नोट किया हो कि बाबा आने से पहले 2 मिनट दादी को झटका भी लगा, अच्छा, और 2 मिनट भी लगे आंख खुलने में। प्राय ऐसा नहीं होता था, आए बाबा बस आए। ये जिस तन में बाबा आते हैं उसका ब्रेन नेचुरली है, आयु बढ़ रही है, और ये जो जहां कमर में ये सब हुआ है इसका संबंध सीधा ब्रेन से रहता है ना, तो ब्रेन की स्थिति के कारण कुछ कुछ ऐसा हो जाता है। मुझे याद आ रहा था बाबा ने कहा था कभी कि बाबा निश्चय की परीक्षा भी लेता रहेगा और अंत तक बहुत थोड़े बच्चे निश्चय में फुल पास होंगे। एक होता है बिल्कुल संशय न हो कि जो हो रहा है, चाहे बाबा चला जाए फिर आए, चला जाए फिर आए, वही ठीक है। और प्रश्न भी उठाइए क्या हो रहा है, तो नंबर 2 तो कट हो गए ना, भले फिर संशय निश्चय में बदल जाए, लेकिन एक बार निश्चय की रस्सी कमजोर अवश्य हो गई। साकार में जब बाबा थे तो शिव बाबा आते थे, बीच में ही चले जाते थे, लेकिन तब किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ध्यान में नहीं जाते थे। सबको पता हो जैसे अब बाबा आते हैं, दादी ध्यान में जाती है, भोग रखा जाता है, फिर बाबा प्रवेश करते हैं। साकार में ऐसा नहीं था कि भोग लगेगा, बाबा ध्यान में जाएंगे, फिर शिव बाबा प्रवेश करेगा, नहीं, बाबा बैठे और शिव बाबा आ गए। और बाबा हंसी किया करते थे शिव बाबा कि जब इसे खांसी उठती है ना, बलगम होता है, बदबू होती है, मैं भाग जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। बाबा तो अपने परिवार में बैठते थे ना, कोई पब्लिक में थोड़ा ही, तो बच्चों से बात करते थे, ये हंसी की बातें भी और ये सत्य भी। तो बाबा का आना और जाना उसमें तो कुछ बात ही नहीं, उसके लिए ये सेकंड्स का काम है, खेल है। तो कहीं भी हमें उसकी कार्य प्रणाली में संशय नहीं होना चाहिए, उसको हमें संपूर्ण रूप से जानने की जरूरत होती है। तो बाबा ने पहले सभी के भाग्य की रेखा देखी, फिर सभी को कौन सा टाइटल दिया, संतुष्ट मणि, और कौन सा काम दिया, माताएं बताएंगी, काम भी दे दिया बाबा ने, कौन सा पता नहीं क्या दिया था, कैसे स्टूडेंट ढीले, होमवर्क भूल गए, किसी को दुख नहीं देना, ये मुरली में था ही नहीं। अव्यक्त बाबा जब आए तो एक बहुत बड़ा काम भी दे गए, एक लाइन का काम, ठहरो पहले माताओं को, जरा माताओं की बुद्धि में हलचल होने दो ना, आया याद माताओं को, अरे मैंने आधा तो बता दिया, पीछे वाली बहने बताएंगी। हलचल में अचल, खुद भी रहना है हलचल में अचल और नहीं अडोल नहीं, अचल अडोल एक ही बात होती है। दूसरा, संसार में जो बहुत हलचल होगी उन्हें भी अचल करना है। तो ये हम सभी के लिए समय की भी एक सूचना है कि संसार हलचल की ओर बढ़ रहा है। हलचल विनाश की होगी, हलचल बहुत अति दुखों की होगी, रोगों की भी होगी। मुझे एक डॉक्टर ने बताया, अभी मैं एक जगह था, कि आजकल जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर शुगर के हैं। ये बीमारियां भी महामारी बनती जा रही हैं। शुगर का तत्कालीन ज्यादा असर दिखाई नहीं देता, पता भी नहीं चलता लोगों को, लेकिन धीरे धीरे खून गाढ़ा होने लगता है उससे भी, और उससे शरीर बहुत कमजोर, अंग कमजोर और कई तकलीफें, जिसका जो अंग कमजोर है उस पर असर आने लगता है उसका। किसी की टांगों में खून नहीं जाता, किसी के हार्ट में नहीं, किडनियों में नहीं, किडनियों के जो काम हैं वो डल हो जाते हैं, तो किसी किडनी फेल हो रही, हार्ट फेल हो रहे हैं, किसी का लीवर कमजोर हो रहा है, किसी को और कुछ हो रहा है, ये सब बहुत आजकल बढ़ रहा है। और इन सब से भी ज्यादा रोग बढ़ते जा रहे हैं मन के। मन बहुतों का खुश नहीं है दुनिया में। जिनके परिवारों में सुख शांति है, बच्चे आज्ञाकारी चरित्रवान हैं, काम धंधे सब अच्छे हैं, वो तो कलयुग में भी बहुत भाग्यवान हैं। लेकिन जिनके बच्चे तंग कर रहे हैं, जिनके बच्चे चरित्रवान नहीं हैं, जिनके विकर्मों के कारण उनको विघ्न बहुत आ रहे हैं, संबंधों में टकराव रहता है, वहां बहुत कठिनाई हो रही है। और क्योंकि आत्मा कमजोर हो गई है तो क्या हो रहा है? नहीं, और कुछ, जो छोटी बातें होती है ना, वो ब्रेन को प्रभाव डाल रही है। पहले नहीं था, मनुष्य मुस्कुरा के पूरा कर देता था, बच्चों के बीच कुछ हुआ छोड़ के चल दिया आगे बढ़ के, बाप के बच्चे को डांट दिया, बच्चे ने अपमान अंदर चला गया। आत्मा कमजोर होने के कारण, मन कमजोर होने के कारण इफेक्ट तेजी से होते जा रहे हैं। हम सभी को क्या करना है? अभी इसे सब आदत डालेंगे, नो इफेक्ट। सभी अच्छे पुरुषार्थी अपने जीवन में इसको अपना फॉर्मूला बना दे, सिद्धांत बना दे, नो इफेक्ट। समझते हैं ना माताएं इसका अर्थ, इंग्लिश का शब्द है ना, बातों का प्रभाव नहीं। और इसके लिए केवल दो चीजें शुरू करें, दो बस। बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन हम केवल पहले दो की चर्चा करेंगे। एक, बहुत हल्का रहने का अभ्यास लंबे समय से, हल्के रहना है। दूसरा, स्वमान के द्वारा, ईश्वरीय नशे के द्वारा बेफिकर बादशाह बनना है, बादशाह बनना है। यही बहुत चीजों की फिक्र करनी नहीं है, माताओं को भी। क्या विचार है माताओं का? बच्चे आपकी आशाओं के अनुरूप ठीक नहीं उतर रहे हैं, क्या करेंगे? एक लड़की का फोन मुझे अभी आने से पहले, वो 10वीं में है, बस केवल 10वीं में, कहा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। माँ बाप ने बड़ी कोशिश की मुझे पढ़ाने की, अब मेरा ट्यूशन बंद करा दिया कि ये तो पढ़ती नहीं, अब मुझे फेल होना है, मेरे सुसाइड करने को इच्छा हो रही है, मर जाऊं, छोड़ो झंझट। 10वीं क्लास की लड़की को सुसाइड करने की, मरने की, सुसाइड समझते हैं ना माताएं, अपने को मारने की तीव्र इच्छा हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं पूछता हूँ, इससे तो नहीं पूछा पर मैं पूछता हूँ, आज दो तीन फोन ऐसे ही कन्याओं के आए, टीवी कितना देखती हैं? एक कन्या बहुत हायर एजुकेशन में, LLB के बाद एक कोर्स होता है LLM, वकीलों के लिए हायर और भी ऊंचा, वो LLM कर रही है। कहा पता नहीं क्या हो गया मुझे, बुद्धि बिल्कुल मंद, ब्लॉक, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया और मैं क्या करूं, मैं पढ़ नहीं सकती, किताब खोलने को मन नहीं कर रहा है, जो पढ़ती हूँ वो याद नहीं होता है, मुझे क्या हो गया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये इफेक्ट हैं, ये बाहरी वातावरण के भी इफेक्ट हैं, अपने जन्म जन्म के विकर्मों के भी इफेक्ट हैं, अभी इफेक्ट तो समझ रही ना माता है, और ये मनुष्य के अंदर के विकारों के भी इफेक्ट हैं। माताएं थोड़ी थोड़ी आगे हो जाओ, आगे दो दो फुट आगे खिसक जाओ, आगे वाले आओ, आगे बहुत आगे आ जाओ और आगे। तो इनसे बचने के लिए फिर मैं इस छोटी कन्या को सिखाया, पहले तो इसे प्रतिज्ञा कराई, मैंने कहा जितनी दुखी तुम अब हो ना, मरने के बाद इससे 100 गुना दुखी हो जाओगी। कहा ऐसे है क्या, मैं तो सोच रही दुखों से छूट जाऊंगी। मैंने कहा मरने का संकल्प अभी छोड़ दो, प्रतिज्ञा करो मेरे आगे कि मैं मरूंगी नहीं जीऊंगी। तो बेचारी करने लगी, अच्छा मैं मरूंगी नहीं, छोड़ देती हूँ संकल्प, पहले तो मैंने उसे ये काम कराया। फिर पढ़ाई के लिए मैंने उसको छोटी सी विधि बताई कुछ, क्योंकि ये जो ब्रेन है बहुतों का ब्लॉक, जैसे मैंने इस बड़ी कन्या की बात सुनाई जो LLM कर रही है, कि उसको कुछ याद नहीं, उसको पढ़ने की इच्छा नहीं, वो परेशान हो रही, मेरे पापा मम्मी क्या कहेंगे मुझे, पैसा खर्च कर रहे हैं, मेरे से बहुत आशाएं हैं, मुझे भी अपने से बहुत आशाएं हैं, क्या करूं मैं। ये ऐसी मनोस्थिति कि जिससे बाहर निकलने का उन्हें पता नहीं क्या करे वो। मैंने उनको तो विधि सिखाई, पर सभी इस पे ध्यान दें, हमें बहुत हल्के रहना है, कुछ चीजें जो नहीं हो रही हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। कल एक माता का ऐसा ही फोन था, ये मैं खास सुना रहा हूँ आपको, इसके बारे में सभी को समझदार बनना ही है। कहा मेरे दो लड़के हैं, एक 11वीं में एक 12वीं में, दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं है, क्या करूं मैं। मैंने कहा काम क्या है घर में, बिजनेस है, अच्छा। तो मैंने यीशु को राय दी, उनके पढ़ाने के पीछे अपनी शक्तियां नष्ट न करो, क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं, उनके पढ़ने में रुचि नहीं, वो होशियार नहीं है। पूछा मैं उन्हें काम में लगा दूं क्या, पाप तो नहीं होगा, माताएं ये भी सोचती हैं, सबके बच्चे पढ़ रहे मेरे नहीं पढ़ेंगे, पाप तो नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, ये बड़ा भारी पुण्य होगा कि तुम उनसे बोझ हटा के उन्हें कमाई में लगा दोगी। मैंने कहा 12वीं कर लेने दो दोनों को, जितना भी हो, फेल हो या पास, पढ़ लेने दो एक एक साल और फिर उन्हें अपने बिजनेस में लगाओ। मैं आपको ये कहानी भी इसलिए सुनाई, जो चीजें नहीं हो सकती उसके लिए दबाव नहीं, टेंशन नहीं, मार्ग बहुत सारे हैं ना, दूसरी ओर बच्चों को ले चलो, जहां उनकी रुचि है उधर उनको ले जाओ। एक बच्चे की ऐसी कहानी, ये बच्चा 9th क्लास में, माँ बाप मेरे पास लाए, ये खेलता है केवल, पढ़ता नहीं है, लड़का देखने में पहलवान जैसा, छोटी आयु, छोटा ही लेकिन बॉडी से लग रहा था पहलवान है। मैंने माँ बाप को बाहर भेजा, मैंने कहा इससे मैं अलग से बात करूंगा, पहले मैंने पूछा क्या। कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अपनी बच्चों की टीम का कैप्टन हूँ, ये मेरे मम्मी पापा समझते नहीं है, पढ़ो 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 मेरे पीछे लगे रहते हैं, खेलो नहीं, मेरे को खेलने में बहुत रुचि, मैं कैप्टन हूँ अपनी टीम का और पढ़ता भी हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल कमजोर हूँ, 2nd क्लास तो आती है। मैंने उसका सब कुछ जान लिया, फिर उन्हें समझाया माँ बाप को बुला के कि देखो इसका एक योग्यता है खेल खिलाड़ी बनने, क्रिकेटर बनने की, वो भी तो आजकल छोटा फील्ड नहीं है ना, टीवी पे अगर आ रही हो कमेंट्री तो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले भी अपनी पढ़ाई छोड़ के टीवी खोल के बैठ जाते हैं, वो सबसे बड़े VIP है ना आजकल। तो इस मैंने उन्हें समझाया, इसको उधर चलने दो, पढ़ भी रहा है ये। मैंने उसे फिर समझाया तुम भी ये करना, अभी नाइन्थ में था वो। कहा मैं पढ़ूंगा जरूर, पर मुझे इसमें शौक बहुत है। तो सभी अपने को हल्का करें, सब अपने अपने जीवन को देखो। कुछ चीजें हर एक के पास ऐसी हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, वो होंगी। बच्चों का सबका भाग्य अपना अपना, सबकी बुद्धि अपनी अपनी, सभी तो फर्स्ट क्लास नहीं हो सकते ना। सभी पढ़े हैं भाई, तो एक क्लास अगर 50 स्टूडेंट की है, फर्स्ट क्लास कितने होंगे उसमें, है नहीं? एक तो होता है टॉप क्लास, फर्स्ट क्लास होंगे 4-5, किसी में 6-7। सेकंड क्लास 20 होंगे, 15-20। थर्ड क्लास और 5-7 फेल होने वाले भी होंगे या नहीं? आजकल अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं कहीं फेल नहीं होते, पर 2-4 फेल होने वाले भी होंगे जरूर। अब माँ जोर लगाती रहे, थर्ड क्लास बच्चा है, तुम्हें फर्स्ट क्लास ही आना है, नहीं तो घर ना आना, तो क्या करेगा बच्चा बेचारा, दबाव में आ जाएगा ना, और ये उसके लिए अच्छा नहीं रहता। माताओं की कहानी हो चुकी है, हर साल होती है, अहमदाबाद में, गुजरात में, माँ ने कह दिया था, पिछले साल की घटना, हाईस्कूल की परीक्षा, इतने नंबर नहीं आए तो मुंह न दिखाना, लास्ट पेपर देकर आया, उसको लगा के बिगड़ गया मेरा तो, सब मेरे नंबर आएंगे नहीं अच्छे, घर आया ही नहीं। बहुत बड़ा तालाब है वहाँ, कांकरिया प्रसिद्ध है, एग्जाम के समय पुलिस लगा दी जाती है वहाँ चारों ओर, बच्चे बहुत सुसाइड करते हैं, मर गया। अब माँ देखती रह गई कि अब नंबर चाहिए थे या बच्चा। अब वो अपने को जीवन भर क्षमा नहीं कर पाएगी, दुखी रहेगी कि मेरे कारण मैंने अपना बच्चा खो दिया। परिवार वालों का व्यवहार कैसा होगा उससे आप समझ सकते हैं ना माताएं, परिवार वाले भी रोज उसको बोलेंगे तुमने हमारे घर को बर्बाद कर दिया, तुम कैसी हो, कोई डायन कहेगा, कोई कुछ, बिगाड़ लिया ना जीवन। इसलिए समझदार बनना है, अब जो ज्ञानी आत्माएं हैं उन्हें बहुत समझदार होना है। जो कुछ नहीं हो सकता उसे छोड़ दो, जो हो सकता है उसे अच्छे से अच्छा करो, ठीक है या नहीं? टेलरिंग में कौन कौन है? आप मान लो बहनों के कपड़े सिलते हैं, भाइयों के आपको नहीं आते। भाई कोई कोट सिलवाने आ गया और वो कहने लगा आप टेलर हो, मेरा कोट क्यों नहीं सिलोगे, सिलो, क्या करेंगे आप? आपको भाइयों की शर्ट भी सिलनी नहीं आती, कोट तो छोड़ो। समझाना पड़ेगा ना उसे, उसे भी हल्का होना पड़ेगा ना। इस बात पे बहुत ध्यान दें, स्वयं को हल्का करना है। अब भले आप नोट कर लो, बुद्धि में नोट कर लो, संगम युग पर बुद्धिमान वही जो अपने को अब हल्का करे। कामनाओं का भी त्याग, इच्छाओं का भी त्याग, और ये बहुत सारी उलझने नहीं, हल्कापन, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बस सब अच्छा हो रहा है, यही होना है। क्योंकि सभी आत्माओं के कर्म विकर्म पूर्ण होने को हैं, पूर्ण होने को हैं। जिसके पुण्य ज्यादा हैं उसको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, जिसके पाप ज्यादा हैं उसको कठिनाइयां मिल रही हैं। अभी मुझे एक फोन आया यहाँ आने से 10 मिनट पहले, भाई जी ये बताओ मेरा योग नहीं लगता, कारण क्या है? मैंने कहा कारण जानोगे तो परेशान हो जाओगे, निवारण ही पूछ लो। कहा नहीं, पहले कारण बताओ। मैंने कहा मुरली नहीं सुनते, अभी मुरलियों में आया ना, जिनके भी कर्म बहुत हैं उनका योग नहीं लगता। मैंने कहा एक तो ये है, आगे भी सुनना चाहते हो तो सुना दूं, नहीं तो छोड़ दो, कैसे योग लगाऊं, यही पूछ लो कि नहीं बता दो। जिसके विकार बहुत हैं योग नहीं लगता, जिसका संग बुरा है, जिसका भोजन बुरा है, जिसके पास व्यसन है उनका योग नहीं लगेगा, जिनका स्वभाव सरल नहीं है, जो खुश नहीं रहते उनका योग नहीं लगता। बेचारा परेशान हो गया, तो मेरा कैसे लगेगा, ये तो सब है मेरे पास। मैंने कहा चलो अपनी दीदी से बात कर लेना कैसे लगे, हम मुझे तो जाना है। हल्के हो जाएं। बहुत अच्छी बात याद रखेंगे, जो स्वयं हल्के होंगे उनके विकर्म भी हल्के हो जाएंगे, उनके संस्कार भी हल्के हो जाएंगे, उनकी बीमारियां भी हल्की हो जाएंगी, उनकी समस्याएं भी हल्की हो जाएंगी। क्योंकि ये सब चीज ज्यादा बढ़ती हैं सोच सोच कर। संडे की मुरली सुनी थी ना कल की, गोलियां कैसे खाओ हैं? ड्राई फ्रूट नहीं तो कईयों को क्या होता है, पांच गोली खानी एक साथ, एक पीली एक हरी एक काली एक लाल, एक सब हाथ में ली, आहा गोली, ये पता नहीं क्या करेंगे, डॉक्टरों ने भी कहा हुआ नुकसान करती हैं गोली, खा रहे फायदे के लिए और संकल्प कर रहे हैं कि गोलियां नुकसान करती हैं, पर खानी तो पड़ेंगी, खा ली। ये जो संकल्प हैं इनका ही बुरा इफेक्ट होता है। इसलिए बाबा, कल मैं देख रहा था बाबा कैसी सुंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि खुशी से खाओ ना, खानी है तो ड्राई फ्रूट है, सेब है, ये संतरा है, ये मौसमी का जूस है, खा लो ना आनंद पूर्वक, खाना ही है, शरीर को एनर्जी देनी है, रोगों को ठीक करना, खुशी से खा लो। आजकल बहुत दवाइयों का इफेक्ट इसलिए भी गलत पड़ रहा है कि खाने से पहले ही नेगेटिव विचार हैं, दवाइयों का साइड इफेक्ट बहुत होता है, खा तो रहे हैं साइड इफेक्ट ना हो जाए। जो ऐसा करते हैं वो इसको चेंज करो। जो संकल्प हम बार बार करेंगे क्या होगा, उसको हम बुलाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उसका आकर्षण होगा। इसलिए भोजन खाते हुए मैंने पहले भी यहां बताया है और सब शुरू कर दें कल से, भोजन सामने आए पहला ही संकल्प ये नहीं हो क्या बनाया है, ध्यान देंगे आप, बैंगन बना दिया आज तो, हम तो खाते ही नहीं, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, ये ब्रह्मा भोजन अमृत है, मेरे सामने अमृत की थाली आ गई है, ये पवित्र भोजन आ गया है, पहला संकल्प यहाँ से शुरू करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा मुझे खिला रहा है उसको थैंक्स भी दे दो। और अगर आप टाइम लगाना चाहें थोड़ा सा, कुमार हैं अपने घर में भोजन खाना, आपके पास टाइम है, प्रकृति को थैंक्स दे दो, तुमने हमें ये भोजन प्रदान किया, तुमको बहुत बहुत थैंक्स, बाबा को थैंक्स दे दो, तुम्हारे भंडारे से ये भोजन हमें मिला, आपको बहुत बहुत थैंक्स, ये भोजन तुमको अर्पित, स्वीकार करो, फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, खाओ उसे, भोजन अमृत बन जाएगा। तो जितने सुंदर संकल्पों से भोजन खा सकें वैसे ही खाना, बीमारी भी है ना, संकल्प करना ये अमृत है, ये बहुत शक्तिशाली औषधि है, इसको खाते ही मेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी, मेरे शरीर में एनर्जी आ जाएगी, ये संकल्प करना। पसंद है माताओं को, अपने बच्चों को भी सिखाना घरों में, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, खाने की थाली देखते हैं पहले नाक चढ़ाएंगे, क्या बना दिया मम्मी, पहला यही करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं आजकल, सिखाओ उन्हें कि भोजन खाने का जितना आनंद लेंगे भोजन उतना ही ज्यादा एनर्जी देगा, दवाई का काम करेगा, रोगों को ठीक करेगा, सचमुच अमृत बन जाएगा। पसंद है भाइयों को भी, ये सभी शुरू करेंगे तो हल्के रहना है, कामकाज ज्यादा हो उसमें भी हल्के, दबाव नहीं, सभी अभी से आदत डालें ब्रेन पर, दबाव नहीं, ज्यादा काम है उसका दबाव, अरे खाना बनाना है, सफाई भी करनी है, ऑफिस यात्रा, बहुत काम, टेंशन थकान दबाव, इससे बीमारियां बढ़ेंगी और ये ब्रेन को धीरे धीरे कमजोर करेगा। हमें ईश्वरीय नशे के द्वारा अपने को बेफिकर बादशाह भी बनाना है, क्योंकि विनाश का खेल संसार की हल चले, जिसमें बाबा ने कहा अचल रहना है। वो खेल ऐसा होगा कि किसी की कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोई उपाय तो होगा ही नहीं उसे रोकने का। सरकारें, मिलिट्री, पुलिस, सामाजिक संस्थाएं, सोशल वर्कर सब हाथ खड़ा कर देंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रभु लीला को स्वीकार करो, घर चलने की तैयारी करो। इधर से हम लोग संदेश देंगे, घर चलने की तैयारी करो, सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। माताएं क्या सोच रही, बड़ा खराब बात बोल दी, सबको संदेश दिया जाएगा रेडी, सब छोड़ने के लिए तैयार, मेरापन निकाल दो, मेरा कुछ नहीं है, जब तक था आनंद लिया, अब चलने के लिए तैयार हो जाओ, बुलावा आ गया है घर जाने का। ये सब इधर से आवाज जाएगी, उधर से लोग सोचेंगे अब कुछ नहीं हो सकता, जो हो रहा है स्वीकार कर लो, रोएंगे भी नहीं लोग, ऐसा हाल हो जाएगा रोएंगे नहीं। जब हम छोटे थे तो लोग बताया करते थे, चेचक होती थी बहुत, गांव के गांव साफ हो जाते थे, एक को जला के आ रहे दूसरा तैयार, उसको ले जा रहे जला के आ रहे, रोना ही छोड़ दिया, जैसे ये भी काम है भाई, एक ये मर रहे हैं इनको जलाना है, लकड़ियां भी नहीं मिल रही हैं, रोना खत्म। जिनके मरे उन्होंने भी रोना छोड़ दिया, अब किस किस के लिए रोए, तो सभी मर रहे हैं, ये हाल विनाश काल में हो जाएगा। हमें खुद को भी अचल रखना होगा इन दो चीजों की प्रैक्टिस से। कौन कौन सी बताए? हल्कापन, स्वमान के द्वारा बेफिकर बादशाह, मस्त रहना, मस्त रहना, बादशाहों की तरह रहना, ये आदत डालनी है। और ये वो रह सकेंगे जो ज्यादा नहीं सोचेंगे, और जो सोचने के आदती हो गए, सोच ही रहे हैं, वो तो जिंदे ही मरे हुए होंगे। तो हमें अचल अडोल भी बनना है। तीसरी बात भी ध्यान रखें, कौन साथ है? यहां शिव बाबा छत्र छाया और शरीर छूटा तो उसके साथ घर। बाबा ने कभी बोला था, लोग चिल्लाएंगे हाय मरा हाय मरा, और तुम कहेंगे मुक्ति में गया, जन्म जन्म की इच्छा पूरी हो गई इसकी। तो ये सब चीजें स्मृति में रखनी होंगी। तो कौन हमारा साथी है? ये नशा भी हमें बेफिकर बादशाह बनाएगा, स्वमान भी हम में से कईयों की स्थिति हो जाएगी। कौन सी? सुशील तुम बताओ। बाबा है महाकाल, हम में से कई आत्माएं बन जाएंगी मास्टर महाकाल। सब तो ये खराब है ना, जो सुनेगा कि हम महाकाल, बड़ा खराब, लेकिन महाकाल माना आत्माओं को देह से मुक्त करने वाले। तड़फेंगी ना आत्माएं देह में, मकान गिर गए, भूकंप हो गया, लोग दब गए, मरे नहीं दबे पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई अंदर ही दबे हैं, चिल्ला भी नहीं पा रहे हैं, उन्हें देह से मुक्त करना, मुक्ति देना, ये होगा मास्टर महाकाल की स्थिति। और ये वो कर सकेंगे जो लंबे काल से ऐसे दीदी रहे होंगे, अकाल तख्त नसीन रहे होंगे, जो लंबे काल से अकाल तख्त नसीन, वही मास्टर महाकाल, निर्भय भी और सबको मुक्ति देने वाले भी। तीसरी बात थी इसी में कि संसार में जो बहुत हलचल होगी, हमें उन्हें वाइब्रेशंस देकर अनेक आत्माओं की हलचल को दूर करना होगा। अब कल्पना करो, एक परिवार के चार लोग मर गए, अब मां परेशान है, होगी परेशान, बेचैन है, उसे नींद भी नहीं आ रही है। अभी पाली में भी हुआ था ना, यहाँ सुना होगा समाचार, आठ मरे थे एक साथ कार में थे, ट्रक खड़ा था सामने सड़क पे कहें, उसकी वो पीछे लाल लाइट जलती है ना, वो थी नहीं, अंदर चली गई पीछे से कार, आठों मर गए। एक ही परिवार के थे, एक परिवार की आठ अर्थियां उठी, सोचो क्या हाल हुआ होगा। सारा बाजार भी बंद हुआ, शोक मनाया सबने, पूरे टाउन ने, पूरे शहर ने शोक मनाया था, अभी की बात है 15 दिन हुए होंगे। तो ऐसे में उनके मन में जो हलचल है, अपने वाइब्रेशंस देखकर उन्हें अचल बनाना। अब रोने के लिए बच गए बूढ़े लोग, अब वो परेशान, उनके चित्त को शांत करना ये है उन्हें अचल बनाना, उनके मन की हलचल को समाप्त करना, इसके लिए बहुत श्रेष्ठ योग, लंबे काल का योग अभ्यास, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस। वो आत्माएं जो लंबा काल व्यर्थ से मुक्त रही हैं, जिन्होंने अपना समय वेस्ट नहीं किया है, जिन्होंने परमात्मा आशीर्वाद और वरदान प्राप्त किए हैं, वो दूर से ही दृष्टि देकर, वाइब्रेशंस देकर, फरिश्ता स्वरूप धारण करके वहां जाकर वाइब्रेशंस देंगे और उनके दुखों को खत्म करेंगे। इसके लिए बाबा हमें तैयार करना चाहते हैं। जो स्वयं ही हलचल में होंगे वो दूसरों की हलचल तो मिटा नहीं सकेंगे। अब सोच लें आप क्या करना है, जिसको ऐसा महान कार्य करना है वो पहला कदम उठाएं, व्यर्थ नहीं, व्यर्थ से हमारा नाता ही नहीं, व्यर्थ के लिए ये जीवन नहीं मिला है, ये ब्राह्मण जीवन व्यर्थ के लिए नहीं मिला है, समर्पित जीवन व्यर्थ में बिताने के लिए नहीं मिला है, अपने से बात करें। तो पहला कदम हो व्यर्थ में कोई रुचि नहीं, और इसके बाद जो ये महान लक्ष्य है कि हमें संसार को बहुत कुछ देना है, इसके लिए अपने को पूरा डेडिकेट कर दें, अपना पूरा जोर लगा दें इसके लिए। बाबा कहा करते थे, लास्ट की मुरलियां मुझे याद हैं, रात की मुरलियां, बच्चे विश्व की बादशाही पाने के लिए संकल्प करो, विश्व की बादशाही पाने के लिए 20 नाखूनों का जोर लगाएंगे। ये कहावत है, 20 नाखूनों का जोर लगाना, ना पूरा जोर लगा देना, अपनी सारी ताकत लगा देना, एक एक श्वास और संकल्प और सेकंड को लगा देना। ऐसा संकल्प करें जिनको लक्ष्य है कि हमारा जीवन ऐसा हो, हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम विनाश काल में संसार के काम आ जाएं। सोच लो सभी, हम संसार को देने वाले बन जाए, अपने लिए कुछ नहीं, देना ही देना, रोतों को शांत करने वाले बन जाएं, जिनको नींद नहीं आ रही उनको सुलाने वाले बन जाएं, जो समस्याओं से परेशान हैं, तनाव से जिनके सिर फटे जा रहे हैं उनको हल्का करने वाले बन जाएं। लंबे काल के अभ्यास की जरूरत है इन सब के लिए। तो जो भी ऐसा महान कर्तव्य करना चाहे, ये बहुत सुंदर कर्तव्य होगा, ऐसी आत्माओं की चारों युगों में बहुत मान्यता होगी। हम में से ही होंगे ना ऐसी आत्माएं, विजयी रत्नों में से होंगी ऐसी आत्माएं, 108 रत्नों में से पहले 25 मन के ऐसे हैं जो संसार की ये महान सेवाएं करेंगे। उनमें से कुछ जा भी चुके हैं, वो सूक्ष्म रूप से सेवा करेंगे, और जो इस वर्ल्ड स्टेज पर होंगे वो साकार में ये सेवा करेंगे, संसार में वाइब्रेशंस देकर ये महान कार्य करना। उनकी स्थिति कैसी होगी, जैसे सवेरे सूरज उदय हो जाता है, संसार का अंधकार विलीन हो जाता है, ऐसे ही ये आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर विश्व के गगन में ऐसे चमकेगी कि हर एक मनुष्य के मन में जो अंधकार होगा ना उस टाइम, ये क्या हो रहा है, कोई भगवान को भी गाली देंगे, बाबा के बच्चे भी बाबा को दोष देंगे, संशय उठाएंगे, बाबा मदद नहीं करता, ये अंधकार होगा मनुष्य के मन में, उन्हें दिखाई नहीं देगा सत्य क्या है। तो वो ज्ञान सूर्य बनकर सबके मन के अंधकार को हरने वाले हो जाएंगे। करना चाहेंगे ये महान कार्य, उनकी स्थिति पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह होगी, जिसकी ओर सब आकर्षित होते हैं। सबने देखा ही है, हर मास देखते होंगे, आकर्षित करता है ना, देखने की इच्छा होती रहती है। पिछले साल मैंने देखा, सोचा कि मैं जरा इस चीज को ध्यान से देखूं। चंद्रमा की 14वां दिन था और अगले दिन पूर्णिमा थी, दोनों दिन के चांद की मैं तुलना करना चाहता था, तो 14वीं का जो चांद था उसमें आकर्षण बहुत कम था, और जब पूर्णिमा हो गई एक ही दिन में, बस मन करे इसे देखते ही रहे, तो एक कला कम होने पर भी हम में वो आकर्षण नहीं आएगा जो बाबा चाहते हैं। बाबा हमें इसलिए फुल मून बनाना चाहते हैं ताकि हमारा आकर्षण संसार की दुखी आत्माओं को आकर्षित करे, उनका ध्यान आ जाए, और हमारी ओर ध्यान आएगा तो हम कहाँ ले जाएंगे उन्हें, हम कहाँ ले जाएंगे, बाबा की ओर हम बाबा से जोड़ेंगे ना उन्हें। हमसे कोई जुड़ता है तो हम उन्हें बाबा से जोड़ते हैं, तो उन्हें मुक्ति का भी वरदान मिलेगा और उनके उस समय के कष्ट भी दूर होंगे। इसके लिए बहुत अच्छी साधनाओं की जरूरत है, इसलिए अपना सब कुछ, इसमें धन की तो बात नहीं, लगा दें इस स्थिति को पाने के लिए, बहुत काम आएंगे संसार के। अपने तो सभी काम आते हैं, अपने परिवारों के तो सभी काम आते हैं, लेकिन ये संसार ही हमारा परिवार हो जाए और हम इस संसार के परिवार के काम आ जाएं, सबकी केयर करें, सबकी पालना करें, सबके दुख दूर करें, जैसे घर में माँ बाप होते हैं, बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, हम भी ऐसे पूर्वज, माताएं जगत माता जगदम्बा, सारे संसार को देने वाले बन जाए। माता तैयार करेंगे अपने को इसके लिए, या मेरे अपने ही बच्चे, क्या विचार माताओं का, चाहेंगे तैयार करना, जिन्होंने बच्चों के काम पूरे कर लिए वो तो कर सकते हैं ना, हैं, बच्चों के काम पूरे भी तो कर दिए होंगे कईयों ने, माताओं को तैयार करना है अपने, बच्चे सेट हो गए ना अच्छी तरह, उनकी शादियां हो गई, उनको बच्चे हो गए, वो अपना काम कर रहे हैं, मुक्त हो जाओ। लेकिन कुछ माताएं मुक्त होती नहीं, अब पोतरों से मोह, अब उनकी चिंता, अब इनका क्या होगा, थोड़ा अपने को मुक्त करने का संकल्प करें, ये अपने हाथ में है या नहीं, किस किस की चिंता करेंगे हम, अब समय है अपनी चिंता करने का, महान स्थिति बनाने की चिंता करने का, क्योंकि जिनकी चिंता हम करते हैं हो सकता है उन्हें अपनी चिंता बिल्कुल ना हो, हम ही परेशान रहते हो, मुक्त करें अपने को, मुक्त करके महान स्थिति को प्राप्त करेंगे, तो जो यहाँ मुक्त वो सबको मुक्ति का वरदान देंगे। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।